नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा। बिहार में कोसी और गंडक बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद राज्य के 13 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और इसके परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। और गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5,000 मीटर दौड़ जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोच से स्वर्ग गेट तक पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोच से स्वर्ग गेट के बीच इस भूमिगत खंड की लागत लगभग 1,810 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो स्वर्ग गेट से कटराज एक्सटेंशन की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत तकरीबन 2,955 करोड़ रुपए होगी। प्रधानमंत्री बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण करेंगे। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। सोलापुर में मौजूदा टर्मिनल भवन को सालाना 4,00,000 से अधिक यात्रियों को सेवा देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री भीड़ेवाड़ा में क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले के पहली बालिका विद्यालय की स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित करेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में मंगलवार को 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू में एक जनसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो चरण में भारी मतदान इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्ष में जम्मू का तेजी से विकास किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जम्मू के बिश्नाह में एक रैली में कहा कि क्षेत्रीय संसाधनों का फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है। इस चरण में बांदीपुरा एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। एक रिपोर्ट।
बांदीपुरा उत्तरी कश्मीर का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जहां एक महिला प्रत्याशी सहित 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में होगा। चुनाव प्रचार जोरों पे है और प्रत्याशी अधिक से अधिक मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस क्षेत्र में 144 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 5 पिंक मतदान केंद्र भी हैं, जिनका प्रबंध पूरी तरह से महिला मतदान कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासन द्वारा मतदाताओं को अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में एक अच्छा मतदान प्रतिशत दर्ज किया जाए। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल।
इधर हरियाणा में एक ही चरण में 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के हिसार में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है, वहां स्थिरता नहीं हो सकती, क्योंकि वो झूठे वादे करती है, चुनाव के बाद उनसे पल्ला झाड़ लेती है। श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है।
जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटा लेने लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं।
दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है और लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र की 2 दिन की यात्रा के बाद कल कहा कि आयोग का दल 11 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिला। श्री कुमार ने बताया कि सभी दलों ने अपने अनुरोध पत्र आयोग को सौंपे।
सभी पार्टीज ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज हैं, काफी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश न करें।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी। न्यूयॉर्क में कल रात संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों का समाधान किया जाना है उनमें भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराना और आतंकवाद के प्रति लंबे समय से चले आ रहे पाकिस्तान के लगाव को खत्म करना शामिल है।
Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism.
विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादियों पर प्रतिबंध को राजनीतिक कारणों से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने मध्य पूर्व में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पक्षों से हिंसा को तुरंत रोकने की अपील की है। श्री गुटेरेश ने कहा कि लेबनान और इसराइल के साथ साथ मध्य क्षेत्र के लोग इस युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को युद्ध से पीछे हटना चाहिए। उधर हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरुल्ला की मौत के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी इसराइल को निशाना बनाएगा उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि ईरान और मध्य पूर्व का कोई भी क्षेत्र इसराइल की पहुंच से दूर नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हिजबुल्ला प्रमुख की मौत से कई पीड़ितों को न्याय मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में कल पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने की हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोक नृत्य, संगीत, कला और पारंपरिक पोशाक जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विविधता देश की विरासत है।
पूर्वोत्तर की परंपराओं और प्रतिभाओं को आगे लाकर हम सब इन राज्यों के कारीगरों, कलाकारों और समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनकी प्रतिभा को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने तथा उनके विकास के नए अवसर पैदा करने के लिए एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने अतिथि सत्कार, परिश्रम और उत्साह के लिए जाने जाते हैं।
भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने देशभर में पार्टी को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ तेलंगाना में एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की। कल शाम हैदराबाद में पार्टी के नेताओं से श्री नड्डा ने अगले 15 दिन के लिए राज्य के प्रत्येक शक्ति केंद्र और मंडल का दौरा करने के लिए कहा है, सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी लक्षित सदस्य तक पहुंच जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार देश को वर्ष 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाएगी। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने प्रतिबंधित CPI माओवादी के आतंकवादियों द्वारा सेना के जवान की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ में कई इलाकों की तलाशी ली है। NIA ने कल उत्तरी बस्तर जिले के कई गांवों में 11 संदिग्धों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एयरगन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और आपत्तिजनक नक्सली दस्तावेज जब्त किए गए। बिहार में कोसी और गंडक नदी के दो बांधों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने पर राज्य के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान नेपाल और उत्तरी बिहार में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते गंडक, कोसी, महानंदा और अन्य सहायक नदियां उफान पर हैं। इसे देखते हुए 13 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 20 प्रखंडों में 1,40,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
आपदा की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने पटना में एक वार रूम स्थापित किया है। यह विशेष डेस्क दिन रात काम करेगा और अगले 72 घंटे तक बाढ़ की स्थिति और तटबंधों की सुरक्षा पर नजर रखेगा। विभाग ने आशंका वाले क्षेत्रों में अपने बाढ़ प्रमंडल कार्यालयों को सक्रिय कर दिया है। तटबंधों पर लगातार गश्त की जा रही है। सुपौल और सीतामढ़ी जिले में कुछ स्थानों पर तटबंधों से रिसाव की खबर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। गंडक और कोसी के अलावा 8 नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। महानंदा, बागमती और कमला बलान उफान पर है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी आने वाले दो दिन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। 26 वर्षीय खिलाड़ी ने 13 मिनट और 11.82 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। इधर कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज बांग्लादेश पहली पारी 107 रन पर 3 विकेट के नुकसान के साथ शुरू करेगा। वर्षा के कारण कल दूसरे दिन का खेल नहीं हो सका। भारतीय टीम चेन्नई में पहले टेस्ट मैच में जीत कर पहले ही श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद लवलीन। इसराइली हवाई हमले में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला के मारे जाने की खबर को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पत्र ने इसराइली सेना के हवाले से लिखा है, हसन नसरल्ला अब दुनिया को और आतंकित नहीं कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। हिन्दुस्तान की पहली खबर है। पत्र की सुर्खी है, पाकिस्तान हमारी जमीन पर अवैध कब्जा खाली करे, आतंकवाद की सजा भी मिलेगी। डेगू के आतंक पर लगाम की तैयारी, नवभा टाइम्स ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, दिल्ली में टीके के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। 3 साल में 15% ही घटे कूड़े के पहाड़, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र आगे लिखता है, कूड़ा निस्तारण के लिए गुजरात से सबक ले दिल्ली। राजस्थान पत्रिका ने जलवायु परिवर्तन शीर्षक से लिखा है कि मेघालय में चेरापूंजी के बाद मौसिन राम से भी पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का दर्जा छिन सकता है। अब यह दर्जा अरुणाचल प्रदेश के कोलोरियांग को मिल सकता है। आज विश्व हृदय दिवस पर नवभारत टाइम्स ने एक आलेख में लिखा है, तनाव और धूम्रपान से दिल हो रहा बीमार। पत्र कहता है कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए खानपान, व्यायाम और तनाव को हावी न होने देना तथा अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने जैसी बातों पर ध्यान देना जरूरी है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा। बिहार में कोसी और गंडक बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद राज्य में 13 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और इसके परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। और गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर दौड़ जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।